ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी तत्व, उनके सरकार कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चलती है। आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर अब अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है।
नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट देखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं, सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है और आज दुनिया भर में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा हो रही है। नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि बीएसएफ और सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में शक्ति का प्रदर्शन किया है।
जब बीएसएफ और सेना ने एक अप्रतिम शौर्य का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्तापित किया। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है।
पिछले दो वर्ष में अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए लगभग 3,000 अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़कर नेतृत्व किया। अग्निवीरों में से अधिकतर 20 साल के युवा थे जिन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा की। इन युवाओं ने 4 दिन की सैन्य जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंक के गढ़ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि भारत के आतंकरोधी सफल अभियान पर कांग्रेस नेता ने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। श्री राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए भारत की वैश्विक साख के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकरोधी अनुसंधान समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष यासुहिरो हनाशी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख के बारे में बताया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया। डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया कम पश्चिमी, अधिक विविधतापूर्ण और वैश्विक तथा तेजी से एशियाई हो रही है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि नई विश्व व्यवस्था की रूपरेखा आकार लेने लगी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में धीरे धीरे पुनर्संतुलन हो रहा है। डॉ जयशंकर ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि ये केवल आतंकी हमला था। बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 769 अंक बढ़कर 81,721 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 243 अंक बढ़कर 24,853 पर बंद हुआ। क्वालालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में श्रीकांत का सामना जापान के युशी तनाका से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने दक्षिण कोंकण कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों मध्य महाराष्ट्र तथा गोवा में तेज बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण कोंकण गोवा तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र गोवा तट के पास बना हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।